अब होंगी बातें करियर की।
हेलो एवरीवन, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेडियो उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं आरजे श्वेता और आज हमारे बीच मौजूद हैं मिसेज गीता विश्वकर्मा मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की इस बदलती जनरेशन में और इस एरा में करियर को लेकर के टीनेजर्स जो हैं और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा ही डीमोरलाइज्ड रहते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं और क्या करियर ऑप्ट करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इन्हीं सब करियर से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए हमारे बीच मैम मौजूद हैं। करियर काउंसलर हैं और मैम DMIT एक्सपर्ट भी हैं और मैम को XCM के थ्रू बेस्ट काउंसलर अवार्ड भी मिला है। कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर दैट।
थैंक यू।
मैम, पहले तो DMIT एक नया वर्ड हमें सुनने को मिल रहा है जिसके बारे में आई थिंक बहुत ही कम लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के। इट्स लाइक कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम करियर काउंसलिंग वगैरह हम करते हैं। मैम, इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स हमें बताएंगी जिससे और भी लोग अवेयर हों और जान पाएँ कि DMIT एग्जैक्टली है क्या चीज़।
हाँ श्वेता, बिल्कुल। सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी। DMIT इज़ ए डर्मेटोग्लाफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दो साइंसेस को मिला के बनाया हुआ है, एक डर्मा और मल्टीपल इंटेलिजेंस। डर्मा मीन्स स्किन और मल्टीपल इंटेलिजेंस हम समझ ही रहे हैं। तो हमारे जो उंगलियों में ये जो निशान बने हुए हैं इनको रिजेस कहा जाता है, फिंगरप्रिंट्स को, और इसी के बेसिस पे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को निकालते हैं और इससे हमारी पर्सनैलिटी निकलती है, लर्निंग स्टाइल निकलता है, करियर ऑप्शंस निकलते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकालते हैं जिससे कि करियर काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प होती है, स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है।
थैंक यू सो मच मैम DMIT हमें एक्सप्लेन करने के लिए और होती क्या चीज़ें एग्जैक्टली वो बताने के लिए। एक्चुअली मैम, DMIT एक ऐसा वर्ड है, मतलब कुछ यूनिक सा सुनने को मिल रहा है हमें। इट्स लाइक कि मतलब करियर काउंसलिंग तो है ही, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल वाले मेडिकल के ही तौर पे सोचते हैं DMIT को। मैम, अभी तक की आपकी करियर में, आप तक की जर्नी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क किस चीज़ को लेकर के रहा है? मतलब ऐसा कौन सा काउंसलिंग रहा है आपके लिए जो ऐसा लगा है कभी आपको कि डिफ़िकल्ट है शायद थोड़ा बहुत?
नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि हर काउंसलिंग अपने आप में अलग होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि सामने से क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ सब में कॉमन है, क्योंकि ये करियर काउंसलिंग है तो सब लोग बहुत क्यूरियस हैं अपने करियर को जानने के लिए कि उनके लिए क्या बेस्ट होगा आगे। तो DMIT उसमें काफ़ी हेल्प करता है उनको कि कौन सा करियर उनके लिए सही होगा और वो बहुत कम टाइम में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे।
मैम, जैसा कि आपने बोला क्यूरियस होते हैं लोग, उस क्यूरियसिटी को और बढ़ाने के लिए या फिर उसको बरकरार रखने के लिए क्या आपको लगता है कि मतलब जो काउंसलिंग्स हैं एग्जैक्टली मतलब उस बहुत ही ज़्यादा 100% दे पाती हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है उन सब चीज़ों से?
इसके लिए मैं ये कहूँगी जो लोग DMIT को नहीं जानते हैं वो शायद ये कह सकते हैं कि काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार जो DMIT करवा लेता है उसको पता है कि DMIT जो है केवल करियर में नहीं, हमारी हर फील्ड में हमें हेल्प करता है। किसी भी मतलब हमारी लाइफ में कहीं पर भी कोई भी डिसीजन हमें लेना है वहाँ पर हमें DMIT बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
मैम, बेसिकली देखा जाए तो काउंसलिंग इट्स मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा पीरियड का भी टाइम नहीं लेता है और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं, मीन्स एक ड्यूरेशन होता है, कुछ ड्यूरेशन तक चलता है काउंसलिंग, कुछ कुछ काउंसलिंग ऐसे होते हैं। DMIT कितने टाइम का ड्यूरेशन है, कितना दिन हमें मतलब अपने काउंसलर से मिलना पड़ता है या फिर कितना टाइम लेना पड़ता है हमें?
नहीं, इसको हम थोड़ा सा बायफर्गेट करें मेडिकल काउंसलिंग से, इट्स अ डिफरेंट, ये कोई थेरेपी नहीं है एक्चुअली, है ना। वो जो हम सिटिंग्स होती हैं वो थेरेपी में होती हैं, ये सिंगल सिटिंग होती है केवल इसकी। सबसे पहले हम अगर कोई स्टूडेंट करियर काउंसलिंग करवाना चाहता है थ्रू DMIT तो हम उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट लेने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं, उसकी कोडिंग होती है, फिर वो सॉफ्टवेयर में पुट होता है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि 78 पेजेस की रिपोर्ट निकल के आती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें एक दिन हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, फिर हम काउंसलिंग करते हैं। तो और काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्स 45 मिनट्स to 1 आवर रहता है, जिसमें हम उनके सारे सवालों के जवाब देते हैं।
मैम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि मतलब 45 या फिर 1 आवर के 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर अंदर हमें हमारा करियर काउंसलिंग हमारा हो जाता है। आई थिंक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं था अब तक और उन्हें पता चला है अब DMIT क्या चीज़ होती है, तो आई थिंक ज़्यादा वो भी DMIT को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे अंदर खुद ये क्यूरियसिटी आ गई है कि हाँ DMIT एग्जैक्टली क्या चीज़ है। एक बार मैं भी ये चीज़ ट्राई करना चाहूँगी बिल्कुल। और मैम DMIT को लेके या फिर करियर काउंसलिंग को लेकर के आपके अंदर फर्स्ट जो बोलते हैं अर्ज कब हुई और कैसे आपको मतलब ये चीज हुआ कि आपको करियर काउंसलिंग की तरफ ही जाना है, अपना करियर ऑप्ट करना है एज अ करियर काउंसलिंग?
बेसिकली आई एम ए लॉ स्टूडेंट, मैंने खुद ने सिविल जज की तैयारी की हुई है पर अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कुछ काउंसलिंग का डिप्लोमा किया, फिर काउंसलिंग शुरू किया, फिर मुझे DMIT के बारे में पता चला, मैंने DMIT की ट्रेनिंग लिया, उसकी काउंसलिंग की, फिर फाइनली मैं क्रिस्प में जब बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट में फैकल्टी थी और DMIT काउंसलर थी तो उस समय मैं DMIT से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हुआ मेरा और मुझे भी लगा कि नहीं ये बहुत ही ऑथेंटिक वे है हमारे इनबॉर्न पोटेंशियल्स को जानने के लिए। फिर इस फील्ड में मैं आगे आगे काम करती जा रही हूँ और अभी काफ़ी कुछ करना है इसमें।
होप सो मैम कि आपकी जितनी भी दिली तमन्ना है और जो भी आपकी विशेष है वो पूरी हों और आगे आप और भी अच्छा करें। मैम एक ये जो DMIT आप बता रही हैं, DMIT एक तरीके से काफ़ी एक अच्छी चीज़ लग रही है, मतलब बोलते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बच्चों की जो जानने की क्षमता है या फिर जानने की जो एक उनकी कैपेसिटी होती है वो जल्दी पूरी होती है। और मैम अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, जो मतलब बिल्कुल आप कभी भूल नहीं सकती, एवरग्रीन वाला एक्सपीरियंस जिसे आप बोल सकती हैं?
काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन एक्चुअली जब मैं क्रिस्प में थी तो हम लोगों ने डिफेंस ऑफिसर्स के भी ये वाले टेस्ट किए हुए थे। वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए थे और उन लोगों को जब इस बारे में पता चला तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोगों को उनका रिस्पॉन्स मिला था और काफ़ी सारे लोगों ने इसको टेस्ट को करवाया और उनको भी वो चीज़ आगे सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, क्योंकि उसमें पर्सनैलिटीज़ जो निकल के आती है तो पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि करियर तो वो लोग ऑप्ट कर चुके थे लेकिन पर्सनल सोशल रिलेशनशिप के लिए उन्हें काफ़ी हेल्पफुल रहा वो, थैंकिंग कॉल्स भी आए उन लोगों के, तो अच्छा लगता है ऐसे।
और मैम एज अ स्टूडेंट्स जो पीयर प्रेशर में होते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है कि तुम ये स्ट्रीम ऑप्ट करो, ये चीज़ करो, सो नॉर्मली देखा जाए तो 10th के बाद हमें करियर की बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। सो मैम उस टाइम पे आप कैसे कैसे स्टूडेंट्स को डील करती हैं? और बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल जिस ऐसा कुछ केस रहा है जो बिल्कुल मतलब हैंडल ना हो पाए हो या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट्स आए हैं आपके पास?
हाँ, मैं नाम शेयर नहीं करूँगी लेकिन एक मैटर बताऊँगी ज़रूर। एक स्टूडेंट थी, मतलब उनकी मम्मी मेरे पास पहले आई एक बच्ची की कि, और वो उसको डालना चाह रही थी नर्सिंग में और वो लड़की जो थी वो इंटरेस्टेड थी अपना होटल मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसकी मम्मी चाहती थी, मुझे पहले भी उन्होंने बोल, जब उनको DMIT के बारे में पता चला तो उन्होंने बोला, DMIT टेस्ट करवाया और बाद में मेरे से अकेले में मिली और बोले कि आप उसमें काउंसिल कीजिए, नर्सिंग में चली जाए। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी कि जो मैंने उन्हें यही बोला कि नहीं, जो आएगा उसमें हम वही उसको बताएंगे क्योंकि वही वो अच्छा कर पाएगी, अगर हम किसी और चीज़ के लिए आपके कहने पे अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो इट्स नॉट गुड और ये मेरे एथिक्स के भी अगेंस्ट जाता है। और मतलब मेरे लिए मेमोरेबल टाइप की चीज़ रही है ये कि पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि भाई अपने बच्चों को कि उनकी पसंद का वो कर पाए, पेरेंट्स के सपने बच्चे उसे पूरा करवाना चाहते हैं इसलिए वो इस तरीके की चीज़ें भी करते हैं कि प्रेशर तो अलग चीज़ें मुझसे भी कहलवाना चाह रहे थे कि आप यही बोल दीजिए कि वो ये इसका यही आया है। यही एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक केस मिला था मुझे।
सो मैम ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट टाइप का केस था ही और आई थिंक आपके लिए मेमोरेबल भी है ये चीज़। मैम इसके अकॉर्डिंग मतलब इससे हटके अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब ऐसा होता है कि 10th तक उनको लगता है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा या फिर मैं ये वाला करियर ऑप्ट कर लूँगी, लाइक फॉर एग्जांपल कि 10th के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है तो मैं मैथ्स ऑप्ट करूँगा 11th में जाके, बट सडन जो चेंजेस आते हैं उनके माइंड में वो किस वजह से होते हैं और किस चीज़ को लेकर के आते हैं, लाइक वो अचानक से ही अपना स्ट्रीम टोटली चेंज कर लेते हैं?
एक्चुअली इस चीज़ के पीछे ना दो तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि किसी भी फैमिली में अगर कोई एक सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रोल मॉडल बन जाता है फैमिली का। अगर किसी एक कोई एक फैमिली का मेंबर बैंक में चला जाता है तो सब लोग चाहते हैं कि बच्चा बैंकिंग में ही चला जाए, उसी में कोई अगर एक PSC में चला जाता है, कोई एक डॉक्टर बन जाता है तो सब लोग चाहते हैं कि वो उसी में चला जाए। बच्चा प्रेशर में आके वो तैयारी तो करना शुरू कर देता है लेकिन जब उसको समझ में आता है कि नहीं मेरा नहीं कर पाऊंगा मैं ये, तब वो अचानक से चेंज करता है। लेकिन मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि हमेशा ना ये जो टेस्ट है या सिलेक्शन है हमारा, 9th 10th के बाद 9th में आके ही हमें कर लेना चाहिए, जिससे कि 11th में हमें कोई परेशानी ना हो और हम एक ही स्ट्रीम पे जाएं। श्वेता, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह है। अगर आपने एक सब्जेक्ट 11th में ले लिया, अगर आपने सपोज़ बायो ले लिया, फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लो कि आप मैथ्स पढ़ लो, तो आप नहीं, शौकिया तौर पे ज़रूर पढ़ पाओगे लेकिन उसके बेसिस पे कुछ डिग्री नहीं ले सकते। अगर हम बायो ले लेते हैं तो हम मैथ्स में नहीं जा सकते, कॉमर्स ले लेते हैं तो हम बायो में नहीं जा सकते। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये 11th का सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो DMIT इसमें बहुत हेल्प करता है कि आपका, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन भी इसमें निकल के आता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, राइट? तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। श्वेता, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो DMIT है, इट्स नॉट ओनली फॉर द करियर काउंसलिंग, ये सबका होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। मैं एज के अकॉर्डिंग इसको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर यही चीज़ हम 5 से 7 साल के बच्चे का अगर DMIT टेस्ट करते हैं तो उस समय उसकी पर्सनैलिटी और उसका करियर नहीं जानना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे उसका लर्निंग स्टाइल कि बच्चा सीखता कैसे। हमने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जब हम राइम सिखाते हैं तो एक्शन भी करते हैं, कलरफुल चीज़ें भी सिखाते हैं, उनको राइमिंग वे में भी सिखाते हैं, गा के भी सिखाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि हमारे जो 5 senses हैं, तो आपका जो सेंस सबसे स्ट्रांग होगा वो वाली चीज़ कैच कर लेगा, राइट? हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सिर्फ 3 तरीके से सीख सकता है। कैसे? करके, सुन के या देख के। अगर मुझे पता चल जाता है कि मैं कोई भी चीज़ को सुन के सीख सकती हूँ, तो मुझे सिखाने वाले जो मेरे टीचर हैं उनके लिए कितना ईजी हो जाएगा मुझे सिखाना और मेरे लिए कितना ईजी हो जाएगा सीखना। मैं क्यों बेकार में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ूंगी या प्रैक्टिस में लाऊंगी चीज़ें? तो ये चीज़ें छोटे बच्चों को सिखाने में हेल्प करती हैं। फिर हमारे सेंसेस पता चलते हैं। वही जब बच्चा 9th 10th में आ जाता है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है? सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि वो क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करे। तो वहाँ पे हमारा DMIT हेल्प करता है उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। अब बच्चा 9th 10th 11th 12th कर लिया उसने उस सब्जेक्ट से, लेकिन 12th करने के बाद में वो फिर कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि हमारे पास में ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है। फिर वहाँ पे हमारा करियर, अब हमारी करियर की बात आती है कि कौन से करियर में आपको जाना है, क्योंकि उस करियर के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। सपोज़ अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं और हमने 11th 12th में बायो पढ़ा, इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट कंपलसरी कि एक बायो का स्टूडेंट ज़रूरी है कि डॉक्टर ही बने। वो नर्सिंग में भी जा सकता है, फार्मा में भी जा सकता है, एजुकेशन में भी जा सकता है, रिसर्च में भी जा सकता है, और वो हर फील्ड में बहुत एक्सेल कर सकता है। तो अब वो किस फील्ड में जाए, वो हेल्प करता है हमारा करियर ऑप्शन बताने में DMIT हमको, राइट? अब अगर वो फार्मा फील्ड में पहुंच भी गया, अगर सपोज एक बायो का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फार्मा फील्ड में उसने फार्मेसी कर लिया, फार्मेसी करने के बाद में भी अब ऑप्शन इसमें रहता है कि वो रिसर्च में जाए या मेकिंग में जाए, उसके प्रोडक्शन में जाए या उसकी मार्केटिंग में जाए। अब ये डिपेंड करेगा आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो, आपका रिसर्च में नई नई चीज़ें जानने का में क्यूरियोसिटी रहती है, आप रिसर्च में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो। तो DMIT यहाँ पे भी हेल्प करता है हमको। ये हमारे एजुकेशन और करियर की बात हुई। सेकेंड चीज़, DMIT कब करवाते हैं, क्योंकि इससे हमारा पर्सनैलिटी भी निकल के आता है। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, हमारे सोशल और पर्सनल रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारा DMIT हेल्प करता है। सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हस्बैंड, पहले के ज़माने में जैसे कुंडलियाँ मिलाई जाती थी शादी के लिए पहले, है ना, आज की डेट में पर्सनालिटीज़ मैच की जाती हैं कि अगर मेरी पर्सनालिटी डव है, मेरे पर्सनल की, मेरे हस्बैंड की डोमिनेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोगों के बीच में तू मैं होगी होगी, क्योंकि एक बहुत डोमिनेटिंग नेचर का हो गया और एक बहुत ही सॉफ्ट इमोशनल नेचर का हो गया। लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बदल सकते, तो क्या होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने ये टेस्ट करवाया है, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड की ये पर्सनैलिटी है, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगी कि मुझे उनको उसी के साथ एक्सेप्ट करना है। और मेरे हस्बैंड को पता होगा कि नहीं, इसका नेचर बहुत इमोशनल है, तो इससे हार्श नहीं बोलना है। तो जब हम दोनों का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक दूसरों की पर्सनैलिटी को जान के हम उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, सर्वेंट और जो ओनर है उसका रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का जो रिलेशनशिप है वो हम बहुत अच्छा इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
यस मैम, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आप हमें बता दिया कि एग्जैक्टली DMIT किस लिए और किस पर्पज़ से किया जाता है। सो मैम, अभी आपने बोला जैसा कि कुंडली, तो लाइक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं दोनों वर्ड्स को लेकर के. लाइक जैसा DMIT हम बता रहे हैं करियर काउंसलिंग, तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इसे भविष्यवाणी से रिलेट कर सकते हैं, लाइक कि इट्स जस्ट लाइक कि भविष्यवाणी, लाइक यस एस्ट्रोलॉजी. सो मैम, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि एस्ट्रोलॉजी है करके कोई आया हुआ आपके पास?
अधिकतर लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि ये भविष्य भी बताते हैं क्या इसमें, तो मैं एकदम क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, जब भविष्य वाली जो एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की बात करते हैं, पामिस्ट्री में भी हम हाथ की रेखाओं को देख के हमारा भविष्य बताते हैं, तो मैं एकदम क्लियर करूँगी कि हम DMIT में आपका इनबॉर्न पोटेंशियल्स बताते हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ है, और एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में आपको भविष्य बताया जाएगा. इसमें मैं आपको, आपके अंदर क्या है मैं वो आपको बताऊंगी, और केवल आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं, मैं आपके वीकनेसेस भी बताऊंगी, क्योंकि हर पर्सनालिटी में का सॉट एनालिसिस हम करते हैं, उसमें उनका प्लस और माइनस दोनों निकल के आता है. अब प्लस जो है हमारा, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो तो हमें हेल्प करती हैं, लेकिन जो हमारी वीकनेसेस हैं वो हमें रोकती हैं. तो हमें क्या करना है, जब हमारी हम काउंसलिंग करते हैं, तो जब सॉट एनालिसिस करते हैं, तब बताते हैं कि आपकी अगर डोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आप बहुत ही डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक अच्छा कर सकते हैं आपका, क्योंकि क्विक डिसीजन है और फियरलेस हैं आप. जैसे कि ईगल होता है ना, वो बिल्कुल हाई फ्लाई करता है और सबसे ऊंचा उड़ पाता है, और उसकी जो दूरदर्शिता होती है बहुत स्ट्रांग होती है. लेकिन अब उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं कि वो मरे हुए पक्षी का मांस, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, इस वजह से उसे कई बार भूखा भी रहना पड़ता है. तो मीन्स डोमिनेंट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं थोड़े गुस्सैल होते हैं, और अपनी ज़िद रिजिड की वजह से उन्हें कई बार नुकसान भी सहना पड़ता है, और थोड़ा हार्श वॉइस होती है. तो जब हम काउंसलिंग करते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि आपके ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट पे थोड़ा कंट्रोल रखिए. तो जब मुझे खुद को पता है कि अगर मेरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो मुझे हार्श नहीं बोलना है, मुझे मेरे डिसीजन पर थोड़ा सोच लेना है एक बार. और इस तरीके से जब हम डिसीजंस लेते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है.
थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही बड़ा डाउट आ सकता था सबके मन में, सो आपने ये क्लियर किया. और उम्मीद है कि ऐसी ही मतलब और भी अच्छे अच्छे चीज़ें आप और जैसे आपने बोला कि और भी काफ़ी प्लानिंग्स हैं आपके और काफ़ी कुछ अचीव करना चाहती हैं आप, सो और कुछ ऐसा चलता रहे ये सिलसिला, और हमें DMIT जैसी चीज़ों से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मिलते ही हैं, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिले उस चीज़ से, और स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिले इन सब चीज़ों से. मैम, लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि टीनेजर्स और स्टूडेंट्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जिनसे मतलब उनको कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज जो उनके लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है उनके ऊपर.
मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर कीजिए, अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने मन में मत रखिए कोई भी बात, क्योंकि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है. पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें, लेकिन आप बताइए सही, आपके आप क्या करना चाहते हैं ना, वो बताइए. इसके लिए एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि जैसे अभी एक मूवी आई है छपाक, उसमें अगर जो लक्ष्मी है उन्होंने अगर घर में बता दिया होता कि वो म्यूज़िक सीखना चाहती हैं और उसके लिए जाना चाहती हैं, अगर अपने घर में शेयर की होती कि कोई उनसे परेशान करता है, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता उनके साथ में. किसी भी फील्ड की बात हो, कुछ भी बात हो, तो प्लीज़ शेयर टू योर पेरेंट्स.
यस मैम, ये तो आपने बहुत सही बोला कि शेयर करना चाहिए हमें, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है शेयरिंग का. लाइक आज भी भले ही मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लेकिन आज भी पेरेंट्स से बच्चे डरते हैं, और आज भी शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि, और पेरेंट्स से ना बता के फिर अपने सेम ग्रुप वाले से शेयर करते हैं जो उन्हें फालतू के एडवाइसेस देते हैं. तो मैम, इस चीज़ को, जो जनरेशन गैप है, उस चीज़ को कम करने के लिए या फिर इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात आप बोलना चाहेंगी जिससे जो पेरेंट्स और स्टूडेंट बच्चों का जो रिलेशन है थोड़ा एक अच्छा ले पाए एक मोड़?
एक्चुअली इसमें भी DMIT आपको हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि काउंसलिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स की नहीं, पेरेंट्स की ज़रूरी है, क्योंकि घर का जो माहौल है वो बनाने का जो पूरा राइट होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो पेरेंट्स की होती है. जिस तरीके का माहौल वो घर में बनाते हैं, बच्चा उसी तरीके से डेवलप करता है. तो ज़रूरी है काउंसलिंग पेरेंट्स की, उनका ब्रॉड माइंडेड होने की, कि वो अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड एक एज के बाद समझें और सही गलत की जानकारी खुद उसे दें. क्योंकि केवल करियर, केवल ये सारी चीज़ें हमारा मोटो नहीं है, हमारे लाइफ का मोटो है हैप्पीनेस, कि हम कितने हैप्पी रहते हैं.
थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी बातें हमें बताई और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली आपसे, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, और लाइक पेरेंट्स के लिए आपका इतना अच्छा मैसेज था कि वो ब्रॉड माइंडेड कैसे बने और क्या. सो आई जस्ट विश कि DMIT के लिए और भी लोग अप्रोच करें, और इतनी अच्छी चीज़ है, सो आई डोंट थिंक कि किसी को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए. और थैंक यू सो मच मैम फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच.
सो लिसनर्स, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, और आगे हम आपको और भी नए नए जानकारियों के साथ और अच्छे अच्छी टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच.
अब होंगी बातें करियर की.